नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम घोषित, 24 विद्यार्थियों ने परफेक्ट 100 एनटीए स्कोर प्राप्त किया। ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की। 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने से जुड़ी खबर को केंद्र सरकार ने झूठा, भ्रामक और निराधार बताया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी से प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 के दूसरे सत्र का परिणाम जारी कर दिया है। इस बार कुल 24 विद्यार्थियों ने 100 का परफेक्ट एनटीए स्कोर प्राप्त किया है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान के मोहम्मद अनस और आयुष सिंघल, दिल्ली के दक्ष तथा हर्ष झा, पश्चिम बंगाल के देवदत्त मांझी और महाराष्ट्र के आयुष रवि चौधरी शामिल हैं। कट ऑफ के साथ परिणाम जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने आज ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी को लेकर सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने विशेष रूप से ऐसे मामलों को लेकर सचेत किया है जिनमें देश में धार्मिक तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी वेबसाइट, भ्रामक सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पोस्ट और गूगल जैसे सर्च इंजन पर पेड विज्ञापनों के जरिए बड़ी संख्या में धोखाधड़ी की जा रही है। इन घोटालों में पेशेवर दिखने वाली लेकिन फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल और व्हाट्सएप अकाउंट बनाना शामिल है, जो केदारनाथ और चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से ही बुकिंग करें। मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं की तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट करने की भी सलाह दी है। इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। पल्लवी परमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की दावेदारी को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार बताया है। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि सरकार का फिलहाल इस तरह के प्रस्ताव का कोई विचार नहीं है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR जैसे शुल्कों पर लगाया जाता है, जो कुछ उपकरों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित होते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वक्फ कानून से मुस्लिम समाज को बहुत लाभ होगा। पटना में भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ कानून विधेयक को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि विपक्षी पार्टियां वक्फ कानून पर भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मुस्लिम समाज के पसमांदा वर्ग को न्याय देने के लिए लाया गया है।
कि जानते हैं कि एनडीए सरकार के द्वारा वक्फ सुधार और वक्फ संशोधन कानून लाया गया और विपक्षी पार्टियों के द्वारा अलग अलग भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इसको धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के हित में है। भागलपुर में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में मुसलमानों के लिए भारत जैसा सुरक्षित देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता कहीं नहीं मिलेगा।
बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग यहां आए और मुस्लिम समाज के लोगों ने यहां पर बहुत धीरज के साथ बात सुनी है। जो मोदी जी की बात है घर घर तक पहुँचाएंगे, नरेंद्र मोदी का संदेश पहुँचाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट गरीब, यतीम, पसमांदा मुसलमानों के फेवर में। वक्फ एक्ट पर पूरे भागलपुर के मुसलमानों ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हज यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्री कुमार ने हज यात्रा को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में आज अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विभिन्न जगहों पर हज यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा के लिए वरीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाए। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य की जनता भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध से त्रस्त है। श्री यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो गया है।
भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार।
जदयू और भाजपा ने एक स्वर में राजद नेता के बयान की निंदा की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में स्नान करने वाले राजद और महागठबंधन के नेता हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद राजद नेता चारा घोटाला, जमीन के बदले नौकरी घोटाला समेत अन्य घोटालों में अदालती कार्रवाई को भूल रहे हैं।
RCD में एक्स्ट्रा कैरे 26 करोड़ रुपया जो दिया गया उस पर चुप क्यों है? जितने इस्टीमेट और प्राकलन बने, पद निर्माण मंत्री के नाते विजय सिन्हा ने कई जांच करवाया है, OPRMC के अंदर बिना काम किए पैसा निकला, सब ठेकेदार उन्हीं से जुड़े हुए कैसे थे?
वहीं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले स्वयं के और अपनी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार पर बयान देना चाहिए। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री झा ने कहा कि डबल इंजन सरकार से बिहार को काफी फायदा हो रहा है और लोग नहीं चाहते कि इसमें कोई बदलाव हो। उन्होंने विपक्ष पर भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया।
बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 25 में भी उनके नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर जो लोग, मैंने पहले भी कहा था, डबल इंजन के सरकार का जो बिहार का फायदा हो रहा है उसको लोग किसी हाल में मिस नहीं करना चाहते।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी आने से प्रदेश में एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में एक दो स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के एक दो स्थानों एवं उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है एवं पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर घंटा की गति से चलने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी 39.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने असमय बारिश और तूफान से हुई फसल क्षति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर किसानों को राहत दिए जाने का अनुरोध किया है। श्री वर्मा ने फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने और फसल क्षति का उचित मुआवजा दिए जाने का आग्रह भी किया। आज विश्व लीवर दिवस है। दुनिया भर में यकृत की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने को लेकर यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को लीवर की बीमारी से बचने के लिए तैलीय और चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में स्वास्थ्य देखभाल के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। श्री शाह ने विश्व लीवर दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्वस्थ लीवर स्वस्थ भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
2014 में देश में 7 एम्स थे, आज 23 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 है। MBBS की सीटें 2014 में 51,000 थी, आज 1,18,000 है और 75,000 और बढ़ने जा रही है। और ये सब धन के बगैर नहीं होता है। 2014 में हमारा स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था, आज 1,27,000 करोड़ रुपया।
लोगों में लीवर के रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री अमित शाह ने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम पर विशेष बल दिया।
विश्व यकृत दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को, जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है, इस देश के विकास में योगदान देना है, वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए 2 घंटा और दिमाग के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए, अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा है कि 4 मई से 15 मई तक चलने वाले विभिन्न खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और कुल 28 खेल विद्याओं का प्रदर्शन प्रतिभागी भाग लेंगे, प्रदर्शन करेंगे और 4 मई से 15 मई तक इसका आयोजन है। 4 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पटना में इसका विधिवत उद्घाटन होगा। 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं 5 जिलों के अंदर, जिसमें बेगूसराय, भागलपुर, पटना, नालंदा और गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों सहित सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित एक संगोष्ठी में यह बात कही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के दूसरे सत्र के परिणाम घोषित, 24 विद्यार्थियों ने परफेक्ट 100 एनटीए स्कोर प्राप्त किया। ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की। 2,000 रूपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने से जुड़ी खबर को केंद्र सरकार ने झूठा, भ्रामक और निराधार बताया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी से प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।